हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। खाना खाने के बाद शिविका ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, वाओ, द फूड इज रियली ग्रेट, टेस्ट एंड क्वालिटी इज ऑल्सो ऑसम। करण का खाना भी समाप्त हो चुका था। पानी पीने के बाद करण ने कहा, हाँ तो तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ 5-स्टार होटल और रेस्टोरेंट का खाना ही अच्छा होता है? यार, हमारा देसी खाना कभी ट्राई करो, उससे बेहतर टेस्ट तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। शिविका ने उसे याद दिलाया, अरे क्यों नहीं, मम्मी के हाथ का खाना होता है ना, उससे भी बेहतर, ये कैसे भूल गए तुम? करण ने एक गहरी सांस ली और कुछ उदासी से कहा, भूल क्या गया, मुझे तो याद भी नहीं है अपनी माँ के हाथ का खाना। वैसे तुमने तो खाया होगा ना, तुम बताओ। शिविका ने भी कुछ पुरानी बातें याद करते हुए कहा, हाँ, मेरी मम्मी के हाथ का खाना तो इससे भी ज्यादा टेस्टी होता था, और वो हमेशा ही मेरी पसंद का कुछ न कुछ बनाती थी, क्योंकि खाने को लेकर तो मेरे इतने ज्यादा नखरे थे, बट मम्मी के बाद से तो कभी। इतना बोलते बोलते शिविका थोड़ी सी इमोशनल हो गई और अपनी बात पूरी नहीं कर पाई। करण ने आगे कुछ नहीं पूछा। वहाँ कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। तभी वो लड़का बिल लेकर उनके सामने आया। कागज़ के एक टुकड़े पर कुछ नंबर लिखे हुए थे। करण ने वो बिल उस लड़के के हाथ से ले लिया और भुगतान करने लगा। शिविका ने मना करते हुए कहा, अरे तुम क्यों दे रहे हो, रुको मैं देती हूँ, वैसे भी तुम मुझे लेकर ही आए थे ना, मेरी वजह से यहाँ पर। करण ने बहुत ही आराम से कहा, हाँ तुम्हारी वजह से ही आया था, लेकिन अगर मैं बिल दे दूंगा तो भी क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे भी ये इतना ज़्यादा नहीं है, आई कैन अफोर्ड इट। इतना बोलते हुए करण ने अपने पैसे निकालकर उस लड़के को दिए और अलग से 20 रुपए टिप भी दी। वो लड़का खुश होकर चला गया। शिविका ने भी आगे उससे कोई और बहस नहीं की, क्योंकि वो फ़िलहाल करण के सामने अपने पैसों का रौब नहीं दिखाना चाहती थी। खाना खत्म होने के बाद उसने उठने की कोशिश की, लेकिन कमजोरी के कारण वो ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। ये देखकर करण जल्दी से उसकी ओर आया और उसका हाथ अपने कंधे पर रखते हुए बोला, सब कुछ खुद ही करने की आदत है ना तुम्हें हमेशा, लेकिन अगर जरा सा बोल दोगी कि हेल्प चाहिए या फिर मदद कर दो तो छोटी नहीं हो जाओगी तुम, और इसमें कोई बुराई नहीं होती, कभी ना कभी तो हमें किसी की जरूरत पड़ती ही है। उसकी बात पर शिविका ने सफाई देते हुए और माफी मांगते हुए कहा, सॉरी, तुम्हें लगता होगा मैं बहुत घमंडी और अपने आप में रहने वाली हूँ, लेकिन सच कहूँ तो मुझे आदत है अपना सब कुछ खुद ही मैनेज करने की, और पिछले 4 साल से तो मैं और काव्या दोनों का ध्यान खुद रखती हूँ। वैसे काव्या से याद आया, कहीं वो जाग ना गई हो, पता है जागते ही वो सबसे पहले मेरे बारे में ही पूछती है, और उसकी वजह से ही मैं ऑफिस में पूरे टाइम नहीं रुक पाती। करण ने उसकी बात सुनते हुए कहा, तुमसे ही इतनी ज्यादा अटैच है, बाकी घर में तुम्हारे और कोई होता भी तो नहीं, इसलिए तुम ही तो ढूंढेगी वो। और रही बात आदतों की, दो आदतें बदली जा सकती हैं, जैसे कि तुम्हारी न जाने कितनी आदतें बदली होंगी काव्या के तुम्हारी लाइफ में आने के बाद से। करण की ये बात सुनकर शिविका का दिल तेजी से धड़का। उसने नज़र उठाकर करण की तरफ देखा, जो उसका हाथ थामकर उसे कार तक ले जा रहा था। उसके बाद वे दोनों कार में बैठे। करण घर वापस चलने के लिए बोला तो शिविका ने कहा, अभी मेरा वापस घर जाने का मन नहीं है, चलो कहीं और चलते हैं, बस कुछ देर के लिए, और एक मिनट मैं फ़ोन करके काव्या के बारे में भी पूछ लेती हूँ। करण ने अपनी जेब से मोबाइल फ़ोन निकालते हुए कहा, ठीक है तुम बात कर लो, जब तक मैं भी मीरा को मना कर देता हूँ, कहीं वो यहाँ पर आना जाए मुझसे मिलने के लिए, उसे बता देता हूँ कि हम यहाँ से निकल गए। उसके बाद वे दोनों वहाँ से निकल गए। दूसरी तरफ हर्षिता, आज ऑडिशन का पहला दिन था। वो ऑडिशन के लिए गई थी, लेकिन उसका चांस ही नहीं आया। वो एकदम परेशान होकर वहाँ से निकली। नया शहर था और वो वहाँ पर ज्यादा किसी को नहीं जानती थी, लेकिन उसे भूख लग रही थी, इसलिए वो पास के ही एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए चली गई। वो इस वक्त बिल्कुल अकेली थी, क्योंकि वो अपने शहर से यहाँ आई थी, इसलिए यहाँ उसका कोई दोस्त नहीं था। इसलिए उसने अपने आप से बात करते हुए कहा, चलो हर्षिता, अब इतना भी क्या सोचना, भूख लगी है, बस खाना ही तो खाना है, जाकर। इतना बोलते हुए वो रेस्टोरेंट के अंदर आई, लेकिन ये कोई डेटेड और 5-स्टार रेस्टोरेंट नहीं था, इसलिए वहाँ अलग अलग तरह के लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठे हुए थे। हर्षिता ने काफ़ी मॉडर्न ड्रेस पहनी हुई थी, उसका मेकअप भी काफ़ी अच्छा था, वो अपने ऑडिशन के लिए अच्छे से तैयार होकर आई थी, लेकिन उस जगह के हिसाब से उसका लुक थोड़ा ज़्यादा ओवर लग रहा था। हर्षिता के वहाँ आते ही सब उसे इस तरह से घूरने लगे जैसे वो कोई एलियन हो या फिर दूसरी दुनिया से आई हुई लड़की। हर्षिता को भी आसपास के लोगों की नजरें महसूस हो रही थीं, लेकिन फिलहाल उसने सबको इग्नोर करते हुए सबसे आखिर में जाकर एक टेबल पर बैठ गई। हर्षिता के बैठते ही उससे दूर वाली टेबल पर बैठे 4-5 गुंडे जैसे दिखने वाले लड़कों के ग्रुप ने अपनी जगह से उठकर हर्षिता की तरफ आना शुरू कर दिया और उसके साथ वाली टेबल पर बैठ गए। हर्षिता ने उन्हें नोटिस दिया, लेकिन अब वो यहाँ आकर बैठ चुकी थी, इसलिए बिना कुछ खाए पिए वहाँ से नहीं उठ सकती थी। उसने मेन्यू कार्ड उठाकर अपने चेहरे के आगे लगा लिया। वो मेन्यू कुछ भी नहीं देख रही थी, लेकिन उसने उससे अपना चेहरा छुपाया हुआ था। बाकी सब ये सब कुछ देख रहे थे, लेकिन किसी ने भी हर्षिता के लिए कुछ नहीं बोला। इसी बीच एक वेटर उसकी टेबल पर आया। हर्षिता ने राहत की सांस ली और अपना ऑर्डर दिया और थोड़ा जल्दी लाने को कहा, लेकिन तभी उनमें से एक लड़के ने उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। हर्षिता की भी नज़र उस पर पड़ गई, लेकिन वो लोग उसे बहुत ही अजीब लग रहे थे और उनकी हरकतें उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थीं। लेकिन इस वक्त वो वहाँ पर अकेली थी, इसलिए उसने उन्हें इग्नोर करना ही बेहतर समझा और अपना मोबाइल फ़ोन निकाल लिया। वे 4-5 लड़के हर्षिता की तरफ देखते हुए आपस में बातें कर रहे थे। हर्षिता अपने मोबाइल फोन में लगी हुई थी। तभी उनमें से एक लड़का हर्षिता की टेबल की तरफ बढ़ा। हर्षिता की जान जैसे गली में अटक गई, लेकिन वो उसकी टेबल तक पहुंच पाता उससे पहले ही एक लड़का बीच में आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, क्या भाई, किधर किधर जा रहे हो? वो लड़का गुस्से में बोला, हम किधर भी जा रहे हो, तुम कौन होते हो बीच में आकर बोलने वाले? दूसरा लड़का उसे गुस्से से लाल आंखें दिखाते हुए बोला, वो मेरे साथ है और यहाँ मेरा ही इंतजार कर रही थी और मुझे लगा शायद आप लोगों ने उसे अकेला समझ लिया है, इसलिए मैंने सोचा बता दूं मैं हूँ उसके साथ। वो लड़का तुरंत अपनी बात बदलते हुए बोला, अच्छा अच्छा, अच्छी बात है भाई, और वैसे भी मैं उधर नहीं जा रहा था, मैं तो दूसरी तरफ से जा रहा था, क्यों भाइयों? उसके साथ बैठे लड़कों में से एक ने कहा, हाँ हाँ, हम लोग क्यों किसी भी अनजान लड़की की तरफ जाएंगे, वो सच में दूसरी तरफ से ही जा रहा था, तुम्हें शायद कोई गलत फहमी हुई है, हमारा दोस्त ऐसा नहीं है। समर ने उन सब की तरफ देखकर ठंडी नजरों से मुस्कुराया। कौन कैसा है ये तो देखकर ही समझ आ जाता है, लेकिन फिलहाल उम्मीद है तुम लोग हद में रहोगे। वो लड़का एकदम सीरियस होते हुए बोला। वे लड़के एकदम वहां से उठकर वापस अपनी पहले वाली टेबल पर चले गए जो उस लड़की से काफी दूर थी। ये सब देखकर उस लड़की ने राहत की सांस ली। उसने उस लड़के की बातें भी सुनी थीं, लेकिन फिलहाल उस लड़के की पीठ लड़की की तरफ थी तो लड़की को दिखाई नहीं दिया कि वो कौन है। लेकिन जो कोई भी था, हर्षिता ने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि इस वक्त वो लड़का एक फरिश्ते की तरह आया और उसकी मदद की। हे मिस्टर, यू सेव्ड मी, थैंक यू सो मच, हर्षिता ने उसे पीछे से आवाज लगाते हुए कहा। हर्षिता की आवाज़ सुनकर वो लड़का पीछे मुड़ा। हर्षिता ने देखा कि वो दिखने में लगभग उसी उम्र का होगा और उसकी हाइट भी एवरेज से कुछ ज्यादा ही थी। उसकी बॉडी काफी अच्छी लग रही थी और वो हैंडसम भी था, और उसके चेहरे पर जो सीरियसनेस थी, हर्षिता कुछ पल के लिए उसमें खो गई। वो लड़का बिना पूछे ही हर्षिता के सामने वाली कुर्सी पर बैठते हुए बोला, मिस्टर नहीं, समर, और इस तरह फॉर्मली बात मत करो, फिलहाल वो लोग अभी यहाँ से गए नहीं हैं। हर्षिता ने भी उसे अपने साथ बैठने से मना नहीं किया, वो भी चाहती थी कि वो उसके साथ बैठे, क्योंकि अभी अभी उस लड़के ने बिना किसी मतलब के उसकी मदद की थी और इस वजह से वो उसकी एहसानमंद थी। हर्षिता ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ओ हेलो समर, आई एम हर्षिता। उसके हाथ बढ़ाने पर समर ने जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया और मेज पर टिकाकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, आर यू स्टूपिड और वॉट, देखो वो लड़के अभी भी इस तरफ ही देख रहे हैं, तुम इस तरह हाथ मिलाकर इंट्रोडक्शन दोगी तो उन्हें सब समझ आ जाएगा कि हम दोनों साथ हैं और फिर तुम अकेली ही झेलोगी, क्या चाहती हो? समर की इस बात पर हर्षिता थोड़ी सी शर्मिंदा होते हुए बोली, सॉरी, आई एम सॉरी, एंड थैंक्स ऑल्सो, तुमने मेरी इतनी हेल्प की जबकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो और मुझे अकल नहीं है सच में। अच्छा तुम बताओ क्या करना है मुझे? समर ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, कुछ भी नहीं, बस एकदम नॉर्मल रहो और इस तरह से बर्ताव करो जैसे कि हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं, बस और कुछ भी नहीं। हर्षिता ने मुस्कुराकर पूछा, ओके समर, तो क्या खाओगे, मैं तुम्हारे लिए कुछ ऑर्डर करूं, आखिर तुमने मेरी मदद की, उसकी मैं तुम्हें ट्रीट तो दे ही सकती हूं। समर ने तुरंत ही मना करते हुए कहा, अरे नहीं नहीं, मैं ठीक हूं और वैसे भी तुमने अपने लिए कुछ तो ऑर्डर किया ही है ना, मैं उसमें ही खा लेता हूँगा, इससे उन लोगों को शक नहीं होगा। इतना बोलते हुए समर ने हर्षिता के सामने रखी प्लेट में से उसका खाना उठाकर एक बार में खा लिया। हर्षिता को इस बात की उम्मीद नहीं थी, इसलिए उसका मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। लेकिन फिलहाल समर के साथ बैठकर वो काफी कंफर्टेबल फील कर रही थी और उसके साथ अपना खाना शेयर करने में भी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। क्रमशः